मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 3 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी अमरेश कुमार मौर्य का, जो गईपुरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं आप सबको। और सूचना ये है फ्रेंड्स कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, नहीं दिया जाता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो शनिवार को कल आपको एज इट इज मिलेंगी। और साथ ही साथ आप सबको एक वीकली क्वेश्चन, साप्ताहिक प्रश्न दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। राइट फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज अपने विषय की शुरुआत करूं, क्षमा मांगते हुए मैं एक करेक्शन आप सबको बताना चाहूंगा। और एक अखबार में जो मुझे पढ़ने को मिला था उसके गलत इंटरप्रिटेशन के कारण मैं एक गलत सूचना आप लोगों को दे चुका हूं, उसे आप करेक्ट कर लें। अभी चाइना के जो ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं वो प्रौद्योगिक सूचना अधिनियम के तहत, उस पर मैंने धारा 66A की बात शायद कही ही थी, वो बेसिकली 69A है। मैंने जब चेक किया जिस अखबार से मैंने लिया था तो शायद वहां भी कुछ मिसप्रिंट हुआ या जो भी, खैर वो बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने इसकी ओर मेरा ध्यान दिलाया। तो दोस्तों करेक्शन, दो करेक्शन है। पहला तो यह है कि जो 66A है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2015 में असंवैधानिक करार दिया गया है। मैंने कुछ बातें आपको 66A के बारे में बताई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, जनहित याचिका, तो उसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत 19 के तहत हमें दिया गया है, यह उसका उल्लंघन करता है, इसीलिए यह जो 66A है संविधान विरुद्ध है। हालांकि इसके बाद भी बीच बीच में अखबारों में आपको पढ़ने को मिल जाता होगा कि सरकार कभी कभी इसका उपयोग कर लेती है और बकायदे ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस सरकार से जवाब भी मांगती है। क्या होता है खैर वो हमारे जानने की बात नहीं है, लेकिन अब आप देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया है तो इनफैक्ट वो असंवैधानिक ही है, तब तक असंवैधानिक रहेगा जब तक कि अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये संविधान सम्मत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, तो सरकार चाहे तो बकायदे फिर से एक इसी तरह का कोई संशोधन संसद में ले आए, उसे पारित करा ले, तो इसके बाद फिर से ये वैलिड हो सकता है। अभी जो 69A है जिसके तहत अभी जो ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। बेसिकली ये अपने आप में स्वतंत्र एक धारा है और इसमें इसने बेसिकली केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है। उसमें यह लिखा गया है कि यह जो धारा है सरकार को अधिकार देता है कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, भारत की रक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर दे या इन सबको हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करे। तो दोस्तों इसे आप सब करेक्ट कर लीजिएगा। और अभी खासकर चाइना के जो ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं, देखिए उसको लेकर के हमारे जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है कि यह डिजिटल स्ट्राइक है। डिजिटल स्ट्राइक यानी कि जैसे आक्रमण हम करते हैं ना, तो एक सैन्य आक्रमण होता है, ये डिजिटल स्ट्राइक है। और आप देख रहे हैं कि कैसे चीन काफी कुछ छटपटाया हुआ भी है, खासकर सरकार के हमारे इस कदम के माध्यम से, कदम के कारण कह लीजिए। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं रेलवे का जो एकीकरण करने की बात, निजीकरण करने की जो बात कही गई है उस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, हालांकि हमारे जनरल स्टडीज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो 2036 तक के लिए 2036 के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं, वहां बकायदे इसके लिए संविधान में, रूसी संविधान में संशोधन किया गया है। तो ये बस एक थोड़ी सी जानकारी है। और दूसरी खबर जो दूरदर्शन पर कल विस्तार के साथ बताई गई है और उस पर डिस्कशन भी हुआ है, वह है रक्षा खरीदी परिषद ने लगभग 29,000 करोड़ रुपए की युद्धक सामग्री खरीदने की स्वीकृति दी है। साफ है कि भारत अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है, उसका आधुनिकीकरण करना चाह रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो जनरल स्टडीज की दृष्टि से आपको जानना चाहिए, वो यह कि ये जो खरीदी होगी, इसमें से जो 80% जो खरीदी है वो स्वदेशी है। लगभग 31,000 करोड़ रुपए की जो खरीदी होगी वो स्वदेशी है, यानी कि ये कहीं ना कहीं फिर से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। क्योंकि डिफेंस सामग्री के मामले में, रक्षा सामग्री के मामले में भारत अभी तक विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर था, जिसमें रूस तो हमारा सबसे बड़ा भागीदार है इसको लेकर के। तो खासकर जो आत्मनिर्भर भारत से संबंधित कहीं भी इस तरह की कोई बात आपको पढ़ने को मिले तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें नोट करते चले जाएं, बस पॉइंट वाइज नोट करते चले जाएं कि ये है, ये है, ये है। और इस तरीके से इस टॉपिक पर बहुत अच्छी सामग्री आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। अब मित्रों, हम लोग हांगकांग के बारे में बात कर रहे थे। दूरदर्शन न्यूज पर आपने देखा कि हांगकांग के बारे में विस्तार से बताया गया है। और अब तो सीधे सीधे ब्रिटेन ने लगभग 30 लाख लोगों को कहा है कि अगर आप हमारे यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप ब्रिटेन की नागरिकता ले लीजिए। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है कि हम भी अपने यहाँ शरण देने को तैयार हैं। अब जो हांगकांग है उसकी कुल आबादी ही लगभग 75 लाख के करीब है, और आप सोचिए कि उसमें से 30 लाख को तो ब्रिटेन अपनी नागरिकता देने को तैयार है। तो इसका चीन को तो विरोध करना ही था, क्योंकि चीन ने बहुत जबरदस्त रूप से इसका विरोध किया है और अपने आंतरिक मामलों में एक तरह से हस्तक्षेप जैसा माना है। दोस्तों, हांगकांग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूंगा। बहुत विस्तार से जानकारी की तो जरूरत नहीं है। जब आप चीन का इतिहास पढ़ेंगे तो उस इतिहास में अक्सर हांगकांग का नाम आएगा, खासकर जो प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था 1842 में, और फिर दूसरा जो अफीम युद्ध हुआ 1860 में। पहले से उसकी शुरुआत हुई, दूसरे में उसको और ज्यादा शुरुआत हुई, और बाद में फिर जाकर के 1 जुलाई 1997 को ये जो हांगकांग है ये चीन को ट्रांसफर कर दिया गया। और जो चीन को ट्रांसफर किया गया था उसका जो सिद्धांत रखा गया था वो था एक राष्ट्र दो प्रणाली। चीन एक राष्ट्र है, दो प्रणाली, लेकिन वहां जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो दो होगा। तो एक तो चीन का अपना सिस्टम है जो कम्युनिस्ट सिस्टम है जो भी चल रहा है, हांगकांग के लिए एक दूसरी प्रणाली होगी। तो दूसरी प्रणाली के तहत इस जो हांगकांग है उसे कहा भी जाता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यानी कि क्षेत्र। यहां का जो प्रशासन होता है वो अलग तरीके से होता है, राइट? तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और भी आप चाहें तो अपने दिमाग में दर्ज कर सकते हैं कि ये बहुत ही सघन रूप से बसा हुआ हांगकांग जो है वो देश, आप कह लीजिए कि शहर है, इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, आप देखिए जनसंख्या का 6,777 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, सोच करके देखिए, बहुत ही सघन बसा हुआ स्थान है। तो दोस्तों, हांगकांग के बारे में मैं बस इतनी ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी। आगे जब कुछ और बातें सामने आएंगी तो हम लोग देखेंगे। आइए अब मुख्य विषय पर थोड़ा सा बात करते हैं। अखबारों में आज आपने पढ़ा कि किस तरह से रेलवे मंत्रालय ने अब यह निर्णय लिया है कि कुछ रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। यानी कि अब देखिए, ट्रैक तो गवर्नमेंट का ही है, स्टेशन भी गवर्नमेंट के ही है, लेकिन वहां प्राइवेट ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाएगी और उसका बकायदे एक सिस्टम होगा। सिस्टम इसी तरह से होता है कि सरकार जो उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करेगी उसके बदले में उनका जो रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू का कुछ प्रतिशत वो अपने पास रखेगी ताकि उन्हें सुविधाएं प्रदान कर सके। और साथ ही साथ जो भी ट्रेन चलाने के लिए जो लोग निविदा भरेंगे या जो नीलामी में बोली लगाएंगे उनको 35 साल के लिए यह अनुमति दी जाएगी, क्योंकि 1-2 साल के लिए तो देखिए कोई सामने नहीं आएगा, 35 साल तक वो ट्रेन चला सकेंगे। यहाँ जनरल स्टडीज की दृष्टि से आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा कि एक कमेटी बनाई गई थी, विवेक देव राय कमेटी, समिति बनाई गई थी, और इस समिति ने, मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, विवेक देव राय कमेटी, इसने रेलवे के निजीकरण के लिए अपनी सिफारिश की थी, लेकिन 5 साल पहले की ये बात है। अब वो सिफारिश आप यूं कह लीजिए कि अब सामने आ रही है। दोस्तों, देखिए कि इसको लेकर के डेफिनेटली बहुत से लोग आलोचना करेंगे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो रेलवे है ये गरीब लोगों की सवारी है, और अगर प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा तो वो किराया बढ़ा देंगे। तो इस तरह से अब थोड़ी सी इस पर बहस होगी, आप लोग बहस पर ध्यान रखें। लेकिन जो खासकर जो उदारीकरण का दौर है, जब आप उदारीकरण की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक तो यह कि विश्व के बाजार को एक दूसरे के लिए खोल दिया जाए, दूसरा यह कि सरकार प्रतिबंधों को खत्म करे, अर्थव्यवस्था पर जो उसका प्रतिबंध है उस प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म किया जाए। सरकार का काम, इसका शुरू में सिद्धांत यही था कि जो सरकार का काम है वो बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम प्रशासन करना है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना है, और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको सपोर्ट करना सरकार का काम है, बिजनेस करना काम नहीं है। अब रेलवे को सरकार चला रही है, और आप देखिए कि कितनी सारी दिक्कतें हैं। मतलब बकायदे उसके लिए एक आंकड़ा आया हुआ है कि पिछले साल लगभग 840 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, और उसमें से 5 करोड़ तो ऐसे थे जो लंबी प्रतीक्षा सूची में ही रह गए, मतलब वेटिंग चल रहा है। बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, देखिए वक्त पर कहाँ वहाँ टिकट मिल पाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, रेलवे के पास उतना धन नहीं है कि वो उनको मॉडर्नाइज कर सके, यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा सके। उम्मीद की जा रही है कि जब इसका प्राइवेटाइजेशन होगा कुछ रूट्स पर, हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार अपने काम बंद कर देगी, सरकार भी चलती रहेगी, कुछ रूट्स पर प्राइवेट आएंगे तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यात्रियों को भी थोड़ी सी सुविधा होगी। एयरलाइंस इसका जीता जागता प्रमाण है। एयरलाइंस जब केवल भारत सरकार के हाथ में थी तो उसके रेट भी बहुत ज़्यादा थे, सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही थी, रूट्स भी बहुत कम थे। अब आप देखिए कि जैसे उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है, रेल कितने रूट्स इसके तैयार हो गए हैं, कितने एरियाज में एयरलाइंस चलने लगी हैं, उनके किराए भी बहुत कम हो गए हैं। और सच पूछे तो जो आने वाला दौर है अब वो निजीकरण का ही है, उसे बहुत लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस पर अब आपको और भी बहुत सी बातें पढ़ने को मिलेंगी, आप उन सबको ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो केंद्र में आपके होना चाहिए, जो निष्कर्ष होना चाहिए, वो यही है कि आने वाला समय निजीकरण का ही समय है, और उसमें सरकार अपने ढंग से देखे और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो बकायदे चीजों को नियंत्रण में रखे। जैसे कि आप देखिए पूरे के पूरे टेलीफोन वाले एरिया को देख लीजिए, मोबाइल फोन वाले क्षेत्र को देख लीजिए, कितने प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं, प्राइवेट उसमें पार्टनर्स आ गए हैं। बकायदे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करती है ताकि लोगों के हितों की रक्षा हो सके। रेलवे के क्षेत्र में भी ये किया जा सकता है। तो इस तरह का अगर आप निष्कर्ष लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं, अनूप राज जांजगीर छत्तीसगढ़ से, अतुल यादव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और अजीत सिंह अलवर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप सब को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार और दोस्तों का ध्यान रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।